आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
SBS Hindi के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये है 30 अप्रैल 2026 की एक ढलती हुई शाम और आप सभी को वृषाली जैन का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे। आज का SBS हिंदी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों कैमरागिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी आदिवासी और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी धरती पर ये कार्यक्रम आज सुना जा रहा है। दोस्तों आज मुझे बताइए कि भाई जगजीत सिंह का कौन सा ऐसा गीत है जो आपको पसंद है। मुझे याद है कि मंगलवार को मैंने आपसे वादा किया था कि बचे हुए गीतों की रिक्वेस्ट्स मैं आज प्ले करूंगी, जो मैं करूंगी भी। लेकिन आज के लिए मुझे बताइए कि जगजीत सिंह के कौन से गीत ऐसे हैं जो आपको पसंद है। 04397997667 हमारा नंबर है। कार्यक्रम में आज सबसे पहले प्रस्तुत करूंगी आज के संक्षिप्त समाचार, जिसके बाद बात करेंगे फ्यूल पर पैसे बचाने की। इसके बाद नताशा की एक रिपोर्ट रहेगी नवीनतम महंगाई दर पर आए जो आंकड़े हैं उनके ऊपर, और उसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे 3C's बैंड से। इसके बाद आपको SBS फ्लैशबैक में सुनाएंगे भारत से मैक्रो फोटोग्राफी पर आई एक रिपोर्ट। इसके अलावा रहेंगे आपकी पसंद के गीत। आज मैंने आपसे पूछा है कि भाई जगजीत सिंह का ऐसा कौन सा गीत है जो आपको बड़ा पसंद है। भेजिए अपने जवाब मुझे 04397997667 पर। जब तक आप मुझे संदेश भेज रहे हैं, आइए मैं आपको लिए चलती हूँ संक्षिप्त समाचार की ओर। पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ। गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने कहा है कि फेडरल सरकार एंटी सेमिटिज्म और सामाजिक एकजुटता पर रॉयल कमीशन यानी रॉयल कमीशन ऑन एंटी सेमिटिज्म एंड सोशल कोहेजन की प्रमुख सिफारिशों पर कार्यवाही के लिए तैयार है। रिपोर्ट में कुल 14 सिफारिशें दी गई हैं, जिनमें यहूदी समुदाय के कार्यक्रमों में सुरक्षा बढ़ाना, ऑस्ट्रेलिया की खुफिया प्रणाली की समीक्षा करना और देश भर में एक समान बंदूक कानून लागू करना जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में एक फुल टाइम कॉमनवेल्थ काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने पर भी विचार करने की सिफारिश की गई है। वहीं फेडरल विपक्ष नेता एंगस टेलर ने अंतरिम रॉयल कमीशन रिपोर्ट के निष्कर्षों पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि उन्हें रिपोर्ट को पूरी तरह देखने का मौका नहीं मिला है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के संसाधनों को लेकर सवाल तो उठते हैं। हालांकि रिपोर्ट में सीधे तौर पर संसाधनों की कमी नहीं कही गई है, लेकिन ये नेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी में काउंटर टेररिज्म फंडिंग की पर्याप्तता पर सवाल उठाती है। रिपोर्ट में सरकार द्वारा गलत संकट प्रबंधन समिति के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई गई है। इस बीच न्यू साउथ वेल्स ज्यूइश बोर्ड ऑफ डेप्यूटीज ने एंटीसेमिटिज्म और सामाजिक एकजुटता पर रॉयल कमीशन की अंतरिम रिपोर्ट को एक अहम पहला कदम बताया है। संस्था की मुख्य कार्यकारी मिशेल गोल्डमैन का कहना है कि ये जरूरी है कि बढ़ती एंटीसेमिटिक घटनाओं की गंभीरता और आवृत्ति से निपटने के लिए ठोस और बड़े कदम उठाए जाएं। और पुलिस का कहना है कि उन्हें एक 5 साल की बच्ची का शव मिला है जो सप्ताहांत से लापता थी। परिवार की इच्छा के अनुसार बच्ची को कुमानजाय लिटिल बेबी के नाम से संबोधित किया जा रहा है। बच्ची शनिवार 25 अप्रैल की रात घर में सुलाने के बाद से लापता थी। इसके बाद नॉर्दर्न टेरिटरी में पिछले 5 दिनों से व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। मार्टिन टोल ने बताया कि आज शव 30 अप्रैल को दोपहर से पहले बरामद हुआ था। मामले की जांच जारी है। वहीं एंग्लिकेयर ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि देश भर में किराए के मकानों की वहनीयता यानी अफोर्डेबिलिटी रिकॉर्ड निचले स्तर पर चली गई है। संस्था की ताजा रेंटल अफोर्डेबिलिटी स्नैपशॉट रिपोर्ट में देश भर के लगभग 49,000 लिस्टिंग्स का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि जॉब सीकर पाने वाले व्यक्ति के लिए पूरे देश में सिर्फ एक किराया ही किफायती था, जबकि यूथ अलावेंस पाने वाले के लिए एक भी नहीं। रिपोर्ट के अनुसार सिंगल पेंशन पर रहने वाले व्यक्ति 500 में से सिर्फ एक ही घर वहन कर सकते थे, जबकि न्यूनतम वेतन पर काम करने वाला व्यक्ति 200 में से एक से भी कम घर किराए पर ले सकता था। संस्था की मुख्य कार्यकारी कैसी चेम्बर्स का कहना है कि आवास को अब एक बुनियादी अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। 2019 में न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च मस्जिद हमलों में 51 लोगों की हत्या करने वाले ऑस्ट्रेलियाई हमलावर अब उम्र भर जेल में रहेंगे। न्यूजीलैंड की अदालत ने उनकी अपील को खारिज कर दिया है। फरवरी में एक हफ्ते चली सुनवाई के दौरान 35 वर्षीय आरोपी ने दावा किया था कि जेल की परिस्थितियों के कारण वे मानसिक रूप से अस्थिर थे और उन्हें 92 आरोपों में जबरन दोषी ठहराया गया। लेकिन आज जारी सर्वसम्मत फैसले में कोर्ट ऑफ अपील के जजों ने कहा कि ये अपील पूरी तरह से निराधार है। पीड़ितों और उनके परिवारों की ओर से पेश वकीलों ने अदालत के इस फैसले पर संतोष जताया है। और अंत में खबरें भारत से। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है कि देश भर के पेट्रोल पंपों पर ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और खुदरा कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की दरें फिलहाल स्थिर हैं। मंत्रालय ने यह बयान ऐसे समय दिया जब मध्य पूर्व संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है और चुनाव के बाद दाम बढ़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। अफवाहों के चलते कुछ इलाकों में घबराहट में खरीदारी भी बढ़ी थी। सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में प्रति लीटर 10 रुपए की कटौती का भी हवाला दिया और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। इसी के साथ 30 अप्रैल 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, अब संक्षिप्त समाचार के बाद आइए रुख करते हैं ये समझने का कि कैसे बचाएं पैसे। भाई देखिए, ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और उनमें अस्थिरता बनी हुई है। ये पक्की नई बात है कि कब तक कीमतें कम हो सकती हैं, कितनी कम होंगी, कब तक कम ही रहेंगी, कब बढ़ जाएंगी, ये सारे सवाल हमारे बीच में आसपास चलते रहते हैं। तो ऐसे में ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे आप ईंधन में, फ्यूल पे पैसे बचा ही सकते हैं, उनके ऊपर एक अंश हम लेकर के आ रहे हैं। फ्यूल इन फोकस ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड की खास सीरीज है। आइए सुनते हैं इसका पहला एपिसोड, आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ।
आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड, SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है।
ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती ईंधन कीमतें घरों के बजट पर अब दबाव डाल रही हैं और कई लोगों के लिए ये उनके सफर करने के तरीके को भी बदल रही हैं। तो आप क्या कर सकते हैं ताकि आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या छोड़े बिना ईंधन पर खर्च कम किया जा सके? इस एपिसोड में हम जानेंगे पेट्रोल पर पैसे बचाने के आसान और व्यावहारिक तरीके और ये भी सुनेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में लोग इन बदलावों के साथ कैसे तालमेल बिठा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ वृषाली जैन और आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड की एक खास मिनी सीरीज फ्यूल इन फोकस। काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने वाले कई लोगों के लिए गाड़ी चलाना रोजमर्रा की जिंदगी का बड़ा हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, कुछ लोग अपनी आदतों पर फिर से विचार कर रहे हैं। मंजिल तमराकर हफ्ते में 3 दिन मेलबर्न और जिलोंग के बीच लगभग 70 किलोमीटर का सफर करते हैं। पहले वे कभी कभी गाड़ी चलाते थे, लेकिन अब वे ज्यादातर ही सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं।
Previously, I used to travel by car sometimes and go by train sometimes, but with the recent increase in fuel prices, now I have opted to use the public transport.
ट्रेन का इस्तेमाल करने से उनका सफर लंबा हो गया है, लेकिन उससे उन्हें पैसे बचाने में मदद मिल रही है। पहले जितना खर्च वे 2 हफ्ते में करते थे, अब उतने ही पैसे में सिर्फ 1 हफ्ते का ऑफिस आने जाने का खर्च निकलता है। यह अतिरिक्त खर्च उनकी बचत पर असर डाल रहा है।
Not only the fuel, like the other prices has also gone up because of the fuel prices. So yeah, it's impacting and it's reducing the saving that we are having for like the holidays or emergencies.
यह अकेले मंजिल का अनुभव नहीं है। इस समय ऑस्ट्रेलिया भर में कई लोग ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। मार्च 2026 में नेशनल रोड्स एंड मोटरिस्ट एसोसिएशन यानी NRMA के एक सर्वे के अनुसार आधे से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवरों ने अपनी ड्राइविंग को कम कर दिया है। कुछ लोग अब ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग ईंधन बचाने के लिए अपनी यात्राओं को साथ जोड़ रहे हैं। NRMA के पीटर खौरी का कहना है कि ईंधन की कीमतों में राहत मिल सकती है, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा।
It'll take some months, unfortunately, for prices to get back to where they were in February prior to the war.
इस बीच छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। खर्च कम करने में मदद के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स को अस्थायी रूप से आधा कर दिया है। ये उपाय 30 जून तक लागू रहेगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि रोजमर्रा की ड्राइविंग आदतें भी ईंधन की खपत कम करने में मदद कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर छोटी छोटी यात्राओं को एक साथ जोड़कर एक ही सफर में पूरा करना ईंधन बचा सकता है। टायर में सही हवा बनाए रखने से ईंधन की खपत में लगभग 5% की कमी आ सकती है और आपकी रफ्तार भी मायने रखती है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर ईंधन की खपत काफी कम हो सकती है। पीटर खौरी कहते हैं कि कुछ और आसान आदतें भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए।
Don't carry unnecessary weight in the vehicles. Don't drive with a lead foot. Especially off the lights, and also make sure that if you're driving around town and it's a nice day, you turn the air conditioner off and put the windows down. But if you're driving on a highway and you're doing a higher speed, turn the air conditioner on, put the windows up, and that will reduce drag.
Lead foot का मतलब है बहुत तेजी से accelerate करना। इससे ईंधन ज्यादा खर्च होता है। जब इन छोटे छोटे बदलावों को एक साथ अपनाया जाता है, तो इनका असर बड़ा हो जाता है।
It can if you do all of those things combined. So in isolation, you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving around with low pressure in your tyres, it will significantly increase your fuel consumption because the car has to work harder to move. But if you do all of those things, the tyres, making sure you put the windows up on a highway, don't carry unnecessary weight, don't drive with a lead foot, the savings can be significant. Some researchers suggested upwards of a 30% reduction in fuel consumption. So it's worth doing.
पैसे बचाने का एक और आसान तरीका है पेट्रोल भरवाने से पहले अलग अलग जगहों के दाम की तुलना करना। उपभोक्ता संगठन चॉइस के लियम केनेडी कहते हैं कि कई ड्राइवर ये नहीं समझ पाते कि अलग अलग पेट्रोल पंपों पर कीमतों में कितना फर्क हो सकता है।
One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps and platforms. I think a lot of people just sort of go on autopilot and just go to the same server they always go to because it's the most convenient and fill up there, but may not realize that they're being charged way more than they would if they were to go around the corner and fill up somewhere else.
ऑस्ट्रेलिया के हर राज्य और क्षेत्र में ऐसे ऐप या वेबसाइट मौजूद हैं जो आपके आसपास का सबसे सस्ता ईंधन ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स का फ्यूल चेक या सर्वो सेवर, जो कि विक्टोरिया की ऐप है, ऐसी सरकारी ऐप्स हैं और इसी बात का उदाहरण है। इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप बहुत कम मेहनत में पैसे बचा सकते हैं। तंग या टाइट बजट संभाल रहे लोगों, जैसे छात्र, परिवार या वे लोग जो विदेश पैसे भेजते हैं, के लिए ईंधन पर छोटी छोटी बचत भी बड़ा फर्क ला सकती है। मंजिल के लिए सार्वजनिक परिवहन अपनाना सबसे सुविधाजनक विकल्प नहीं रहा, लेकिन इससे उन्हें बढ़ती लागत को संभालने में मदद मिल रही है। और कई ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए अब समय और पैसे के बीच के संतुलन पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो गए हैं और अक्सर अब पैसे जीत रहे हैं। ईंधन की कीमतें अब भी अनिश्चित बनी हुई हैं। ऐसे में जहां संभव हो पेट्रोल का इस्तेमाल कम करना पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती जीवन यापन की लागत को संभालने के लिए और व्यवहारिक सुझावों के लिए SBS ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड यानी ऑस्ट्रेलिया को जाने पॉडकास्ट सीरीज को फॉलो करें। आपके लिए इस अंश को SBS न्यूज से साहिल मकर और SBS हिंदी से प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने।
ये एक SBS ऑडियो पॉडकास्ट था। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के और दूसरे पॉडकास्ट के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाएं।
इस अंश के बाद आइए अब चलते हैं पहले अंतराल की ओर। पहले अंतराल पर जाऊं उससे पहले याद दिला दूं कि आज बड़ा मीठा सा सवाल पूछा है भाई जगजीत सिंह के। ऐसे कौन से गीत हैं जो आपको बहुत पसंद है बताइए मुझे 04397997667 पर। इसके अलावा मंगलवार वाले गीतों की भी लिस्ट है मेरे पास, मैं लेकर के आऊंगी उनको भी। तो बने रहिए SBS हिंदी पर, क्योंकि ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे नए जारी हुए महंगाई दर के आंकड़ों पर। नताशा की बहुत बढ़िया रिपोर्ट रहेगी, तो बने रहिए हमारे साथ SBS हिंदी पर, कहीं मत जाइएगा। वृषाली बस यूं गई और यूं आई, आप सुनते रहिएगा SBS हिंदी को। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर, आप सुन रहे हैं वृषाली को और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI मार्च में फिर से रिजर्व बैंक के निर्धारित लक्ष्य से ऊपर चला गया है। ये ज्यादातर हुआ ईंधन और आवास की लागत बढ़ने से। अब इससे क्या संकेत मिल रहा है कि भविष्य में ब्याज दरें फिर से बढ़ सकती हैं? नताशा एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक काफी अच्छी रिपोर्ट आपके लिए लेकर के आई हैं। उन्होंने चर्चा भी की है एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, आइए सुनते हैं इसको। इसके अलावा आपके संदेश मेरे पास आने शुरू हो गए हैं। मेरे पास एक संदेश आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे चांदी जैसा रंग है तेरा सुनना चाहते हैं। देखिए, ये जगजीत सिंह का गाना नहीं है लेकिन आपने कह दिया है तो मैं आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगी। आप मुझे आज बता रहे हैं कि जगजीत सिंह साहब के कौन से गीत आप सुनना चाहते हैं। 04397997667 हमारा नंबर है। फिलहाल सुनते हैं नताशा की रिपोर्ट।
मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन 2023 के बाद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। मार्च में ये 3.7% से बढ़कर 4.6% हो गई। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स द्वारा 29 अप्रैल को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के चलते ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.9% की बढ़त दर्ज की गई है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस बढ़ती महंगाई के चलते ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक यानी RBA आने वाले समय में ब्याज दरों में फिर से बढ़ोतरी कर सकता है। इस बीच फरवरी और मार्च में लगातार दो बार हुई ब्याज दरों की बढ़ोतरी का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। देश में 1/4 से ज्यादा होम लोन वाले लोग मॉर्गेज स्ट्रेस यानी कर्ज चुकाने के दबाव का सामना कर रहे हैं। पोलिंग एजेंसी रॉय मॉर्गन के नए आंकड़े बताते हैं कि अब करीब 1.44 मिलियन उधारकर्ता इस जोखिम वाली श्रेणी में आ चुके हैं, जो पिछले महीने से लगभग 1,30,000 ज्यादा हैं। इनमें से 18.9% लोग बेहद जोखिम की स्थिति में हैं, जो पिछले दो दशकों से औसत 16.3% से काफी ऊपर है। इस अंश में हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट देविका शिवदेकर से, जो हमें नवीनतम आंकड़ों के बारे में बता रही हैं।
आज के आंकड़े काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि महंगाई हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम टोटल महंगाई देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो 4.6% बढ़ी है ऑन एन एनुअल लेवल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026। एंड पिछली बार फरवरी का डेटा वाज 3.7%, तो 3.7% से 4.6% में जो छलांग लगाई है महंगाई में, वो प्राइमरीली सारी की सारी हैज कम ऑन द बैक ऑफ फ्यूल प्राइसेस। तो हमें जो हम जो जानते हैं कि यूएस ईरान वॉर की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया गया एंड उसके चलते जो पेट्रोल प्राइसेस डीजल प्राइसेस पे जो प्रेशर आया, उस अकेले के ही बलबूते पर इतना शार्प इंक्रीज हुआ है ओवरऑल महंगाई में इन ऑस्ट्रेलिया। अभी जो सेकंड फीचर है महंगाई का, ट्रिम्ड मीन इन्फ्लेशन, जिसमें हम ये जो वॉलेटाइल आइटम्स हैं जैसे कि फ्यूल हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, जिनको एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इंपैक्ट कर सकते हैं जैसे कि वॉर या फिर बैड वेदर कंडीशंस, तो इन सब से भी इनके प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं. तो अगर हम सिर्फ कोर कमोडिटीज को देखें जिनको एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस नहीं करते, तो वो फ्लैट रहा है एट 3.3%. हमने सेम आंकड़े देखे थे फरवरी में, मार्च में भी 3.3% पे ही स्टेबल रहा है. बट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस काफी बढ़े हैं जिसके वजह से हाउसिंग कैटेगरी के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं. तो भले ही ये एक दिलासा देने वाली बात है कि ट्रिम्ड मीन इन्फ्लेशन 3.3% से ऊपर नहीं गया, फिर भी वो कम भी नहीं हुआ है. तो 3.3 आरबीए के टारगेट लेवल से फिर भी ज्यादा है, विच इज 2-3%. तो ऐसे चलते हेडलाइन एट 4.6 एंड ट्रिम्ड मीन एट 3.3, मतलब महंगाई काफी ज्यादा है. एंड इसका बहुत सीधा सीधा मतलब ये है कि अगले हफ्ते जब आरबीए पॉलिसी मीटिंग होगी तो देर इज अ ग्रेटर चांस कि हम एक और इंटरेस्ट रेट हाइक देखें 0.5% का. एंड इसका मतलब ये होगा कि इंटरेस्ट रेट 4.1% से 4.35% पे चले जाएंगे. मतलब पिछले साल जितने भी रेट कट्स आरबीआई ने हमें दिए वो सारे रिवर्स हो जाएंगे एंड वी विल बी बैक टू वेयर वी वर 1 year अगो.
देविका, जैसे आशा की जा रही है कि आने वाले दिनों में मॉर्गेज होल्डर्स के लिए एक बार फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए जाएंगे इन्फ्लेशन को देखते हुए, तो ये बताइए कि ये जो कंज्यूमर हैं अपने बजट को किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं इस स्थिति में?
आई थिंक नताशा, देखो ये ऐसी बात है ना कि महंगाई, अगर एकदम सच्ची बात कहूँ तो महंगाई इस पूरे सिलसिले में सबसे बड़ा विलन है. जितनी जल्दी हम महंगाई को कंट्रोल में लाएंगे उतनी जल्दी आरबीए को इंटरेस्ट रेट हाइक ना करनी पड़े. तो जो मॉर्गेज होल्डर्स है, मेरी ये सलाह रहेगी कि जितना हो सके उतना कंजर्वेटिव रहे इन देयर अप्रोच. जितना हो सके, बाय कंजर्वेटिव मेरा कहना ये है कि दे शुड फैक्टर इन मोर इंटरेस्ट रेट हाइक्स देन कट्स. अभी कट्स तो आने से रहे इन द शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ऐसे एटलीस्ट जो डेटा अभी हमारे पास आ रहा है उससे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं लग रही कि आरबीए कट कर पाएगी इंटरेस्ट रेट्स. तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन इज कि मॉर्गेज ओनर्स, हाउस होल्ड्स, बिजनेसेस सारे ही जो लोन पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर वेरियस नेसेसिटीज, वो एटलीस्ट ये पूरे साल के लिए 4.35% पे इंटरेस्ट रेट्स एज्यूम कर ले कि जहां है मई में एक और हाइक हो जाएगा अगले हफ्ते. उसके बाद हो सकता है कि आरबीआई शायद हाइक ना करे लेकिन वो कट भी नहीं करेगी. तो अ गुड मिडिल ग्राउंड वुड बी कि 4.35% हम एंड ऑफ 2026 तक पकड़ के चले कि इतना तो रहने ही वाला है. एंड उसके हिसाब से अपने बाकी के सारे खर्चे या अपने फाइनेंसेस अडेप्ट करें एंड वैसे ही प्रिपेयर करें फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर.
देविका, हमारे श्रोताओं को ये भी समझाएं कि इन्फ्लेशन किस तरफ आगे जा रही है, इसको समझने के लिए सबसे जरूरी इंडिकेटर्स कौन से हैं?
तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि फ्यूल प्राइसेस, कि हम अभी फ्यूल प्राइसेस डे टू डे लाइफ में हम ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि हर एक इंसान पेट्रोल पंप के पास से तो गुजरता ही है, तो उनको वो दिख ही जाएगा. अभी पेट्रोल प्राइसेस काफी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ हमारे डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट, कार में हम पेट्रोल कितना भर रहे हैं उसके हिसाब से नहीं होता, उसका इम्पैक्ट सेकेंडरी लेवल पे भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब रीजनल फार्मर्स जो है ऑस्ट्रेलिया के, जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें रीजनल ऑस्ट्रेलिया से कैपिटल सिटीज में ट्रांसफर करते हैं आफ्टर फार्मिंग, वो भी ट्रक्स के थ्रू होता है. फार्मर्स जो फार्मिंग करते हैं, जो एडवांस मशीनरी यूज करते हैं, वो भी फ्यूल पे ही चलता है. अभी जब फ्यूल प्राइसेस हाइक होने लगते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि ये फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के वजह से ट्रक्स का कॉस्ट भी ऊपर जाता है, मशीनरी का कॉस्ट भी ऊपर जाता है. तो फार्मर्स हो गए, लॉजिस्टिक सप्लाई वाली जो कंपनीज हो गई, उनके भी मेन इनपुट कॉस्ट ऊपर चले गए हैं. तो ऐसे चलते नेचुरली दोस कॉस्ट्स वो कंज्यूमर्स को पास ऑन करते हैं कि देखो हमारा खर्चा बढ़ गया तो अभी आपको ग्रोसरी स्टोर में भी उतना ही थोड़े से मार्क्ड अप प्राइसेस पे चीजें मिलेंगी क्योंकि हम खुद उन्हें एक इंक्रीज प्राइस लेवल्स पे डिलीवर कर पा रहे हैं. तो डे टू डे लाइफ में ग्रोसरी प्राइसेस भी ऊपर जाने का चांस है. इसलिए मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा विलन इन्फ्लेशन है. मोर देन इंटरेस्ट रेट्स. तो एक ये इंडिकेटर हो गया फ्यूल प्राइसेस को देखना. सेकेंड इंडिकेटर इज एनर्जी प्राइसेस. अभी एनर्जी प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, ये सारे क्लोजली रिलेटेड है. इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, अभी हम जानते हैं कि सारे स्टेट्स के जो रिबेट्स थे वो मोर और लेस अभी खत्म हो चुके हैं. जो जो हमें पिछले बजट में आउटलाइन किए गए थे, डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट यू आर इन, मोस्ट ऑफ देम अभी खत्म हो चुके हैं. अभी आने वाले बजट में अगर वो फिर से रिवाइव होंगे या नहीं, ये हमें अभी फिलहाल पता नहीं है. लेकिन अगर वो नहीं हुए तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी हाई होने के बहुत बड़े चांसेस है. एंड ये सारी इसेंशियल कैटेगरीज है, फूड प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, अपने लोन रीपेमेंट्स, ये सारी क्रिटिकल कैटेगरीज है. इसलिए जहां तक हो सके मेरी सलाह ये रहेगी कि हाउस होल्ड्स, मॉर्गेज ओनर्स एंड बिजनेस ओनर्स में जितना हो सके जो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग कैटेगरीज है वो कम करे. जैसे कि बाहर खाना थोड़ा कम, ट्रैवलिंग थोड़ा कम, क्योंकि ये सारी चीजें महंगी है. अगर हम वहां पे थोड़ा कटबैक करें इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, एटलीस्ट इट बाइज अस सम टाइम कि ठीक है, आरबीआई भले ही उनको इंटरेस्ट रेट हाई रखने पड़ रहे हो, बट बिकॉज हमारे मॉर्गेज रीपेमेंट्स अभी हाई जाने वाले हैं, इफ वी कट बैक ऑन दोज डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग, कि जो हमारी चाहते होती है वो हमारी जरूरतें नहीं होती, जो अपनी चाहतों पे जो हम खर्च करते हैं कि बाहर जाना है, मूवी देखनी है, ये करना है, वो करना है, अगर हम वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में रखें या एटलीस्ट स्ट्रेटेजाइज करें हाउ टू मैनेज दैट, तो आसान, काफी आसान हो सकता है आने वाले महीनों में. एंड सी कि हमें आने वाले महीनों में क्या करना है.
बहुत बहुत धन्यवाद देविका जी हमसे जुड़ने के लिए. आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया रिजर्व बैंक की नीति बोर्ड की अगली बैठक 4 और 5 मई 2026 को होने वाली है. नकद ब्याज दर के लक्ष्य को लेकर फैसला मंगलवार 5 मई 2026 को घोषित किया जाएगा. इस साक्षात्कार में दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है. इस अंश को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए.
और दोस्तों, मेरे पास आपका एक और संदेश आया है, और मुझे ना ये वाला जो एक गीत है, जो गजल है, वो बहुत कम रिक्वेस्ट में देखने को मिलती है किसी के पास से आने पर भी, मतलब बहुत ही कम देखने को मिलती है. नितिन जी ने मेलबर्न से ये गजल रिक्वेस्ट की है कि मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, और मैं बिल्कुल आपके लिए लेकर के आऊँगी. छोटा सा एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के उस पार आपको मिलवाएंगे 3Cs बैंड से. और छोटा सा एक ब्रेक, जल्दी जल्दी जाती हूँ, जल्दी जल्दी आती हूँ ताकि टाइम बचेगा. और क्या करेंगे हम लोग, गीतों की रेलगाड़ी सुनेंगे और क्या करेंगे. और ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर. आप सुन रहे हैं वृषाली को, और मेरे पास आकाश जी का संदेश आया है जो कह रहे वेरी नाइस प्रोग्राम आज, लव इट, थैंक यू सो मच आकाश. जो उन्होंने गाना रिक्वेस्ट किया है वो है होटो से छू लो तुम. बिल्कुल, मैं आपके लिए गीत लेकर के आती हूँ. फिलहाल आइए मुलाकात करते हैं जैज, बाउल और अन्य तरह के गीतों को, इस तरह से क्षेत्रीय लोकगीतों को एक अनूठे संगम में पेश करने वाले 3Cs बैंड से मुलाकात करते हैं और सुनते हैं प्रीति जबल के साथ हुई उनकी ये बातचीत.
ये अनोखा संगीत जो आपने अभी सुना 3Cs बैंड द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो इस समय ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे हैं. 3Cs एक क्रॉस कल्चरल म्यूजिक बैंड है जिसे ऑस्ट्रेलिया के सैक्सोफोनिस्ट मैट कीगन ने 2009 में भारत में बनाया था. ये बैंड बाउल परंपरा, बंगाली लोक संगीत और आधुनिक धुनों का अनोखा मिश्रण पेश करता है. इस बैंड में बाउल गायक राजू दास, गायक और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट देवशीष मोथे और ड्रमर गौरव चैटर्जी शामिल हैं. आज ही हमारे साथ SBS स्टूडियो में हैं अपनी कहानी और संगीत साझा करने के लिए. तो आइए SBS हिंदी पर उनका स्वागत करते हैं और बिना देर किए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं.
सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आज दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, कहीं ट्रंप की राजनीति है, कहीं ईरान की स्थिति है, कहीं यूक्रेन और फ्यूल क्राइसिस भी चल रहा है, तो ऐसे माहौल में आप जैसे कलाकारों से लोगों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए और ऐसे समय में म्यूजिक का क्या रोल हो सकता है?
एक्चुअली म्यूजिक अगर आप देखो तो इट इज एन यूनिफायर कहीं पे, जब अभी इतना प्रॉब्लम थ्रू आउट ग्लोबली अगर आप देखें, एंड उसका इम्पैक्ट तो यू नो एवरीवन इज फेसिंग दैट, सबका लाइफ में उसका इम्पैक्ट हो रहा है। ऐसा एक टाइम में अभी अगर आप हमारा बैंड के बात करें, इट इज अ क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन। अभी हम लोग तीन लोग हैं इंडिया से, द थ्री ऑफ अस हैव वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स टू स्टार्ट विथ। राजू दास बाउल है, बाउल ट्रेडिशन जो है हमारा बंगाल का कि बांग्लादेश का भी है, वो यू नो इट्स मोर देन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड एंड वो प्रेजेंट जनरेशन एक बाउल है। देवाशीष मोथे है कालिंगपोंग से, उनका नेपाली हेरिटेज है, ही इज फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, वो इतना दिन शांति निकेतन में भी थे, वहाँ पे उसका एक्सपोजर हुआ बाउल सिंगर्स के साथ, बाउल म्यूजिशियंस के साथ, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है नेपाली और लेटर यू नो बंगाल का जो कॉम्बिनेशन है with that makes him very unique, because वो दो तारा भी बजाते हैं जो है बंगाल का इंस्ट्रूमेंट, वो मचुंगा बजाते हैं which is from the mountains again, वो नेपाली में गाते हैं, उनका जो मदर टंग है, एंड मैं आई एम फ्रॉम कोलकाता, मैं एक्चुअली ओरिजिनली एक रॉक म्यूजिशियन हूँ, लेकिन विद टाइम आई स्टार्टेड यू नो डिस्कवरिंग माई रूट्स इज वेल, विच इज वेयर द लव फॉर बाउल म्यूजिक ऑल्सो कम्स, और सो द थ्री ऑफ अस आर वेरी डिफरेंट, एंड देन हम कोलैबोरेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया का जो म्यूजिशियंस है मैट कीगन हमारा जो बैंड लीडर है, सैक्सोफोन प्लेयर, अभी हारमोनियम भी बजा रहे हैं मैट कीगन, हमारा बेस प्लेयर है ब्रेंडन क्लार्क और गिटार प्लेयर है हिलरी गेडिस, तो ये तीनों जैज म्यूजिशियंस है, रॉक म्यूजिशियंस है ऑस्ट्रेलिया का, सो ये सब हम एक साथ डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट बैकग्राउंड से है, एक साथ मिल के हम जो म्यूजिक क्रिएट कर रहा है ना, वो दैट इज इंडीड एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफिकेशन। तो अभी ये डिफिकल्ट टाइम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आर्टिस्ट और म्यूजिशियन जो ही बोले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक श्योर दैट वी स्प्रेड लव, एंड यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ हेट्रेड एवरीवेयर इफ यू लुक एट इट, यू नो इवन इफ यू लुक एट सोशल मीडिया, अब जब देखोगे ना देयर इज हेट्रेड का ना एक बिजनेस हो रहा है, हाउ टू सेल हेट इन अ सिचुएशन लाइक दैट। हम लोगों का आई थिंक इट्स अ ड्यूटी कि हम सबको यूनिफाई करें, हमारा म्यूजिक इज ऑल्सो लाइक दैट, एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अभी है हम लोगों का।
जी, और उसी से मेरा अगला सवाल है कि आप सब अलग अलग शैली में इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं और आपका जो म्यूजिक है उसको हम बॉर्डरलेस कह सकते हैं, तो अलग अलग जो कल्चर्स की अभी आपने बात की, हाँ, उसको असली रूप में रखना, उसको ऑथेंटिसिटी में रखने के लिए आप क्या करते हैं, और उसके साथ साथ आप कुछ नया कैसे बनाते हैं, क्योंकि यही एक आपस में कुछ चैलेंज है कि आपको ऑथेंटिसिटी भी रखनी है और साथ में कुछ नया भी दिखाना।
आई थिंक इसका बिगेस्ट क्रेडिट मैट का है, मैट कीगन जो हमारा बैंड लीडर है, क्योंकि जब वो बैंड फॉर्म किए ही मेड श्योर कि हम लोग यू नो वी रिमेन द वे वी आर, हमारा जो ओरिजिनली जो जैसे है हम, हमारा जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल रह जाए, एंड यू नो वो ही वुड गिव दैट स्पेस। तो ये प्रोजेक्ट में ना एवरीवन इज देमसेल्व्स, और जो मिलते हैं ना वो बहुत ऑर्गेनिकली होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ओके नाउ वी विल डू दिस काइंड ऑफ अ फ्यूजन लेट्स ऑल डू इट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट, इट हैज बीन वेरी ऑर्गेनिक एंड मैट हैज हैड अ मेजर रोल टू प्ले विद दैट फाइट दैट वे। सो सभी वी आर ऑल डेवलपिंग, मैट भी खोमोक या डुबकी या दो तारा जैसे बजता है ना, वो फॉलो करके वो भी एक स्टाइल डेवलप किया है, सैक्सोफोन में भी वो अभी हारमोनियम भी बजा रहा है, बट very different approach from a saxophone player's point of view, which itself unique hai bahut, aur Devashish keeps on adding his new instruments all the time, so we are also growing with the band, or as he Ashish said that this is a family, I mean, and I think for all of us that is how we love आपने
फैमिली की बात की, वैसे कहा जाए तो आपकी फैमिली थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस फैमिली भी हो सकती है क्योंकि मैट यहाँ है और आप इंडिया में है. ये बताएं कि जब आप जैमिंग करते हैं तो वो किस तरीके से, क्या आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं या वो आते हैं आपके पास या आप इधर आते हैं?
जब टूर होता है ना तब वैसे ही
पहले आ जाते हैं, फिर कुछ रिहर्सल रहते हैं हम लोगों का. बेसिकली सब याद रहता है, फिर भी कुछ रिहर्सल रखते हैं क्योंकि बहुत शो रहता है और बहुत इम्पोर्टेंट शो रहता है. अभी तो कितना 12 शो
में 4 हुआ है, इसके बाद भी और शोज है. आप जो स्मॉल टाउन के बात किए ना, आप हम जाएंगे मेजर सिटी ब्रिस्बेन जाएंगे, सिडनी में लौटेंगे, वहाँ पे भी शो है. लेकिन इसके अलावा भी बेलिंजन है, पोर्ट मैकगवायर है, वोलोंगोंग है, मिल्टन है,
मुलुम्बिम्बी
है. सो ये टाउन्स में है और मिल्टन में हम लोग एक जैज ब्लूज फेस्टिवल में ही बजाएंगे, विच इज रियली एक्साइटिंग. बहुत अच्छा आर्टिस्ट लाइनअप है. और आई थिंक हम सबके लिए ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम आके ना एक्सप्लोर करते हैं सब जगह, नया म्यूजिशियन से मिलते हैं, वी गेट टू मीट न्यू पीपल, उसके साथ इंटरेक्शन, फिर सुनते हैं बाकी आर्टिस्ट को भी. दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, गेटिंग इंट्रोड्यूस टू न्यू म्यूजिक. वो एक
और एक भी अच्छा बात है, ये हमारा एल्बम अभी नंबर 10 में है
यूरोपियन चार्ट्स में, वर्ल्ड म्यूजिक चार्ट्स में.
तो बहुत अच्छा संवाद है.
आप सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, पूरे
जी जी जी
दैट इज द प्लान.
आपने सीखने सिखाने की बात की जी. तो आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आए हुए हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेशंस के बहुत लोग रहते हैं और ओरिजिनल पॉपुलेशन यहाँ फर्स्ट नेशंस की है. यहाँ का जो लोकल कल्चर है उसके बीच आपको कोई दिलचस्प कनेक्शन दिखा? क्या आपने डिजरीडू बजाया? क्या आपने सीड रैटल के साथ एक्सपेरिमेंट किया?
देखा तो बहुत डिजरीडू बजाने
वाले,
उसका आर्ट भी देखा वहाँ का. इट इज आल्सो ब्यूटीफुल एंड फैसिनेटिंग. और कहीं पे भी यू नो इट इज वेरी यूनिक, लेकिन कहीं पे भी कनेक्शन है ना.
जी, कनेक्शन के ऊपर आपको, आप सब अगर मुझे अपना सबसे यादगार पल शेयर करें कि कभी आपकी ऑडियंस का जो रिएक्शन था, चाहे अच्छा हो जो बुरा है, चाहे अंडे फेंके हो तो ऐसा भी कुछ हो
जरूर तो नहीं फेंका, बहुत प्यार फेंका है तो क्या होता है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत वर्कशॉप किया हमारा बैंड 3Cs, तो मुझे अच्छा लगता है. पहले बार मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में हम लोग वर्कशॉप किया, मुझे अच्छा लगता है कोई ना बहुत वहाँ का स्टूडेंट जानना चाहता है ये जो बाउल का इंस्ट्रूमेंट है, खमक क्या है और दो तरह क्या है, ये कैसे बजाता है, कैसे होता है. तो मुझे अच्छा लगता है वो लोग समझना चाहता है ये कैसे ये कहाँ से है. मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में सब तो फॉरेनर स्टूडेंट है, तो वो लोग जानते नहीं है बाउल गाना क्या है, ये दो तरह क्या है, तो वो लोग सीखना चाहता है. ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैं अच्छे से सिखा रहा हूँ, अच्छे से वो लोग जान रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है. ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है क्योंकि वो लोग जानना चाहता है.
और जरूरी नहीं है कि सिर्फ फॉरेनर्स या यहाँ के लोग जानना चाहते हैं, हम खुद इसके बारे में जानना चाहेंगे और उससे अभी आपके उसका सवाल भी करेंगे. पर आपसे जो आखिरी एक दो सवाल हैं कि अब जो आगे, अगर हम भविष्य की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर एक्साइटेड हैं आप?
एक्चुअली अभी एट दिस मोमेंट जो करंट टूर है ना, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी भी बाकी
नया एल्बम,
नया एल्बम का ही टूर है, स्प्रेडिंग दैट म्यूजिक टू एवरीवन. व्हाट इज रियली अमेजिंग इज जब हम शुरू किए थे Essentially, जैज म्यूजिक का जो ऑडियंस थे वो सिर्फ आते थे. अभी क्या हो रहा है, यू हैव द पीपल फ्रॉम द जैज सीन, यू हैव पीपल हु लव फोक म्यूजिक, डिफरेंट काइंड ऑफ फोक म्यूजिक, दे आर ऑल्सो कमिंग. द इंडियन डायस्पोरा, द नेपाली डायस्पोरा, द बांग्लादेशी डायस्पोरा, यू नो पीपल फ्रॉम साउथ एशियन डायस्पोरा, दे आर ऑल्सो कमिंग. सो वी कैन सी दैट विद टाइम द ऑडियंस इन ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो गेटिंग बिगर with every tour, and that is really exciting. So of course to you know finish the tour successfully and then you know spread our music to more people, I think that is what we love, traveling, playing music, meeting new people, interacting with new cultures. सो वही तो फ्यूचर प्लान है अभी।
जी चलिए, आपके भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एसपीएस हिंदी की तरफ से। सो देवशी जी, राजू जी और गौरव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलकर और आपके म्यूजिक के बारे में जानकर। मैं चाहूंगी कि आपका ऑस्ट्रेलिया का सफर बहुत सफल रहे। आप बेस्ट विशेस विद दैट और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। थैंक यू।
और दोस्तों, मैं ट्यूसडे का असद जी का संदेश पढ़ रही हूँ एडिलेड से। उन्होंने बड़ा प्यारा संदेश लिखा था कि हाय रुशाली जी, कैसी हैं आप? आपका शो हमेशा ही अच्छा होता है और आपकी वजह से शो में और भी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। बहुत ही शुक्रिया। और उन्होंने पेड फॉरवर्ड डे पर लिखा था, व्हेन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया इन 2018 माय फ्रेंड हेल्प्ड मी इन लर्निंग ड्राइविंग एंड गेटिंग द लाइसेंस। लेटर ऑन आई हेल्प्ड थ्री अदर पीपल टू लर्न ड्राइविंग एंड हेल्प्ड देम गेट द ड्राइविंग लाइसेंस। और ये बहुत बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया में, आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। उन्होंने तब खोया खोया चांद गाना रिक्वेस्ट किया था अपनी वाइफ के लिए, जो मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आज आपको मैक्रो फोटोग्राफी पर जो सेगमेंट था वो नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आपके इतने सारे गानों की रिक्वेस्ट है तो बस शो आपके इच्छाओं के अनुसार चलेगा, आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार चलेगा। छोटा सा एक अंतराल लेकर के आ रही हूँ, फिर चलाऊंगी गीतों की रेलगाड़ी नॉन स्टॉप। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है एसपीएस हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृशाली को, और आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की गीतों की रेलगाड़ी असद साहब की ट्यूसडे की रिक्वेस्ट के साथ। और दोस्तों, इसी के साथ वृशाली आपसे कह रही है अलविदा। अपना बेहद ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।